नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर गट रीत गया, एक बरस बीत गया।
सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही। डॉ जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
The global south should be enabled.
वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये और घायलों को 1-1 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशंस को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।